हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनया तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतविदं तथा ग्रह न परः। करारिविन्दे न पदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव गोविन्द धामो धरमाधवीति। व्रजीवसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम्। चोराज्ञगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारणम्। ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंध तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 18। गजेंद्र अपनी स्तुति में भगवान को अत्यंत ही सुंदर रीति से शरणागत हो रहे हैं और अत्यंत ही सुंदर शब्दों में भगवान की महिमा बता रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। गजेंद्र कहते हैं, आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु सक्तये दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः सुहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु सक्तये दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः सुहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु सक्तये दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः सुहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु सक्तये दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः सुहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। शब्दार्थ देखिए, जैसे कि कल श्लोक नंबर 17 में गजेंद्र ने भगवान के विषय में कहा था, स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत, कि भगवान एक स्वांश के रूप में अपने मतलब परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। अब जब समस्त जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं, फिर तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान को पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, वो तो हमारे हृदय में रहते हैं। तो बहुत ही सरलता से जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। परंतु आज गजेंद्र कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, भले ही भगवान आपके बहुत निकट है, आपके हृदय के अंदर है, स्वयं आपसे भी ज्यादा आपके करीब भगवान है, परंतु फिर भी दुष्प्रापणाय मतलब उनको प्राप्त करना केवल कठिन नहीं, अत्यंत ही कठिन है। भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। किन के लिए वो बता रहे हैं कि किन किन के लिए भगवान को प्राप्त करना कठिन है। वे कह रहे हैं आत्मा को, वैसे तो आत्मा को आत्मा कहा जाता है, परंतु यहाँ पर जो कहा गया है मन तथा शरीर को भी आत्मा कभी कभी शास्त्र में कहा जाता है, कि जो मन तथा शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, जिनका पूरा केंद्र जो होता है वो शरीर की वासनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, जो आसक्त होते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और मन की मांगों को पूरा करने के लिए, और आत्मा और उसके बाद आत्मज आत्मा मतलब शरीर और आत्मज मतलब शरीर के द्वारा पैदा होने वाला पुत्र तथा पुत्रियां, आत्मज बोलते हैं जो हमारी संतान होती है ना उसको, जो हमारे शरीर में से निकलते हैं, वैसे उस व्यक्ति के साथ वास्तविक कोई संबंध नहीं है जीव का। जो हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ है, बस शरीर से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम हमारा पुत्र या पुत्री हो गया, परंतु वास्तव में उनका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम क्या है, सच्चित आनंद भगवान के अंश हैं और हमारा रिलेशन केवल भगवान के साथ है, अन्य किसी के साथ नहीं है। परंतु जो व्यक्ति अपने शरीर में और शरीर से उत्पन्न होने वाले संतान में और उसके बाद गृह सॉरी आप्त, आप्त मतलब मित्र तथा संबंधी, और आप्त का मतलब होता है जैसे आप्त को अगर हम प लगा दें तो प्राप्त होता है, यानी शरीर से, शरीर के द्वारा जो प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा शरीर है तभी हमारा मित्र बना, हमारा शरीर है तभी हमारे संबंधी हैं, और इसको ऐसे भी कहते हैं जैसे हमारे कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो पैदा होते के समय नहीं होते हमारे, जैसे अगर किसी का विवाह नहीं हुआ होता है तो विवाह से पहले वो पुरुष और स्त्री आपस में कोई संबंध नहीं होता उनका, मतलब वो आत्मज नहीं होते हैं, शरीर से उनका कोई संबंध नहीं होता है, परंतु विवाह के बाद संबंध जुड़ता है अपने शरीर के द्वारा। जैसे अगर कोई पुरुष है तो इसका स्त्री के साथ विवाह हो जाता है तो वो हमारे संबंधी बन जाते हैं ना, या फिर मित्र बन जाते हैं। तो आप तो मतलब जो हमारे शरीर के द्वारा प्राप्त हुए व्यक्ति होते हैं वो, और उसके बाद गृह, गृह का मतलब होता है घर, जाति, समाज या राष्ट्र, और ग्रह का एक मतलब होता है पत्नी भी होता है, जो गृहिणी होती है उसको भी ग्रह कहा जाता है, और उसके आगे वित्त, वित्त मतलब धन। अभी देखो धन का मतलब होता है जो भी वस्तु हमने धन से खरीदी है, तो ग्रह, गृह यानी जो घर होता है वो भी तो हमने धन से खरीदा होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों को अलग अलग करके रखा, क्योंकि घर के अंदर कुछ अलग से अट्रैचमेंट होती है, अलग से आकर्षण होता है घर के अंदर एक व्यक्ति का, क्योंकि घर में हमारे वो सब रहते हैं, जैसे हमारी पत्नी रहती है, पति रहते हैं, संतान रहती है, तो घर के साथ जो हमारा अट्रैक्शन है वो धन से भी अधिक होता है। तो ये लाइन से जा रहा है, जैसे जीव का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होता है, सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें होती है, आत्मा यानी अपने शरीर में होती है। अगर कभी ऐसा समय आए ना कि तकलीफ होती है कभी किसी को, सबसे ज्यादा आसक्ति होती है अपने शरीर में, जीव हर समय अपने लिए कुछ न कुछ चाह रहा होता है। अभी देखो मार्केट्स में हम जाते हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं, और उनमें अगर देखा जाए तो करोड़ों टाइप की चीजें होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, वो सब किस लिए होती हैं, शरीर से रिलेटेड होती है ना, शरीर में यानी देह में इतनी आसक्ति होती है जीव की कि अपने शरीर के हर एक अंग के लिए कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है, मतलब सर से लेकर नख तक। अब लोग है ना, नख जो होते हैं, नाखून, उसको भी सजाने के लिए, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें लेते हैं, वो नेल आर्ट करने के लिए, मतलब नेल को सजाने के लिए भी जीव कितना समय निकालता है। हर कोई अपने शरीर के हर एक अंग को, चाहे वो कितना ही वैल्यूलेस हो, उसके लिए भी टाइम निकालता है जीव। दूसरों के लिए इतना टाइम नहीं निकालता जितना अपने लिए निकालता है, जो कुछ भी करता है अपने शरीर के लिए करता है आजकल जीव। आत्मा के लिए पूरे सुपर स्टोर में जाके देखो, बहुत बड़ा सुपर स्टोर हो उसमें जाके देखो, कोई एक वस्तु भी नहीं मिलेगी आत्मा के लिए आपको, है ना। सब कुछ जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सब देह को पुष्ट करने के लिए, देह को सुंदर दिखाने के लिए, अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक्स होंगे, वो सब कुछ होगा, वो सब किसके लिए, देह के लिए होगा। और फिर वो अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए खरीदेगा बहुत सारी वस्तुएं। और उसके बाद दूसरा आकर्षण होता है तीसरे नंबर का, मित्र तथा संबंधियों में, अपनी पत्नी में, अपने घर में, और वित्त, वित्त मतलब धन में, धन में बहुत आकर्षण होता है। सत्य वित्त जनेशु, अब जनेशु का मतलब होता है वो बहुत सारे जीव जिससे हमारा आकर्षण होता है, मतलब जो हमारे सहायक होते हैं हमारे कार्यों में, या टाइम पास करने के लिए जो हमने हमारे पास जिन जो साथ में होते हैं, जनेशु मतलब अलग अलग झमेला जो भी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, दास हैं, दासियां हैं, जो हमने खुद अपने लिए मतलब उनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं है, उनसे बाद में भी कोई संबंध नहीं, लेकिन बस एक बना दिया हमने उनके साथ अपना एक संबंध। आज तो लोग जी मनुष्य को तो छोड़ो, कुत्तों के साथ भी संबंध बना के बैठे हुए होते हैं ना। कुत्ते को भी सुबह उठते हैं, सैलून में लेकर जाते हैं, उनके बाल कटिंग करवाते हैं, उनको स्नान कराते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो कुत्ते में इतना आसक्त होगा वो वाला भगवान को क्या प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर यही बताया, आत्मात्मजात गृह वित्त जनेशु सत्त दुष्पाप प्राणाय, उनके लिए बहुत मुश्किल है जो इन सब में बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। किसमें? जो आत्मा में यानी शरीर में, आत्मा जो यानी पुत्र पुत्रियों में, आप्त मनी मित्र और संबंधियों में, गृह मतलब घर में, जाति में, समाज में, राष्ट्र में, वित्त में, धन में, जनेशु यानी विभिन्न प्रकार के दोस्तों में, मित्रों में, कुत्तों में, जिनको जिनकी आसक्ति होती है, जो बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं दुष्प्राप्णाय, उनके लिए तो भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। भला वो कैसे प्राप्त करेंगे भगवान को बताओ, क्योंकि भगवान गुण संग विवर्जिताय, भगवान तो समस्त गुणों से विवर्जिताय कुलुषित नहीं है, भगवान तो सब आसक्ति से, हर प्रकार की आसक्ति से, भौतिक आकर्षण से बिल्कुल अलग हैं। भगवान को किसी भी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं, भगवान ने पूरे संसार को बना दिया परंतु किसी में भगवान का आकर्षण नहीं है। भगवान तो प्रकृति के तीनों गुणों से विवर्जित हैं, तो ऐसे भगवान दुष्प्राप्य हैं उन जीवों के लिए जो अपने देह में, पुत्रों में, पत्नी में, घर में, धन में, मित्रों में, कुत्तों में, जानवरों में आसक्त होते, उनको भूल जाओ कि कभी भगवान प्राप्त होंगे। यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए यहाँ पर गजेंद्र एक उपाय बता रहे हैं कि यदि तुम अपने हृदय में बैठे हुए भगवान के दर्शन करना चाहते हो, यदि उनको साक्षात प्रकट करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुक्तात्मा भी स्वहृदय परिभाविता, मुक्तात्मा भी, फिर आपको मुक्त आत्मा बनना पड़ेगा। यानी वो जीव जो पहले से ही मुक्त हुए हैं, जो इन सब में कोई आसक्ति नहीं रखते। अभी मुक्त आत्मा भी का मतलब क्या होगा? जो ऊपर सारी वस्तुएं बताई गई हैं, देखो पहले उसके लिए सक्त बताया कि उनमें जो आसक्त हैं उनके लिए तो दुष्प्राप्य हैं, लेकिन जो इन सब वस्तुओं से, किन से? अपने शरीर से, अपने पुत्र से, पुत्रियों से। अब देखो हम यहाँ पर इस संसार में आए हैं तो बहुत सारे हमारे संबंधी बनते हैं, हमारे शरीर के बहुत सारे संबंधी बनते हैं, जो जिनका किसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है, किसी के साथ दूसरा कोई संबंध होता है, किसी के साथ मित्रता होती है, किसी के साथ कोई और, तो ये आकर्षण बना रहता है। लेकिन यदि इसके अंदर आसक्ति है तो शास्त्र ने कह दिया तो फिर तो आपको भगवान प्राप्त होना बहुत कठिन है, दुष्प्राप प्राणाय, फिर आपको बहुत कठिनता से मिलेगा। परंतु यदि आपके शरीर में, आपके पुत्रों में, आपकी पुत्रियों में, आपके घर में, आपके धन में, आपके मित्रों में, कुछ कुछ लोग है ना अभी अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में इतना आसक्त होते हैं इन वस्तुओं में कि वो भगवान के लिए समय निकालते ही नहीं है, है ना। करीब मंदिर होता है, घर के करीब होता है, परंतु वहां पर कथा होती है, कीर्तन होता है, बोलते हैं कि देखो कार्तिक का महीना है, आप लोग आना, दीपदान हो रहा है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। परंतु वो बोलते नहीं, हमें तो अपने घर से, अपने अपने पुत्रों से, पुत्रियों से, अपने समाज से, अपने मित्रों से, कोई कोई बोलेगा नहीं आज हमारे घर में हमारे मित्र आने वाले हैं, आज मेरे बच्चों का ये काम है, आज मेरे पत्नी का ये काम है, मेरे पति का ये काम, मतलब कोई ना कोई संबंधियों के द्वारा ऐसी
रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो भगवान के पास आने के लिए समय नहीं निकालते, फुर्सत ही नहीं निकालते, उनके पास समय ही नहीं है भगवान को देने के लिए, तो क्या भगवान को प्राप्त करेंगे। अभी वही व्यक्ति अगर उसको घूमने जाना होता है, हाइपर स्टार में जाना होता है, ओशियन मॉल में जाना होता है, या फिर कोई क्लब में जाना होता है, कोई वीडियो देख मूवी देखने के लिए जाना होता है, तब उनके पास पूरा समय निकलता है। वो चाहे कितना भी दूर है, वो वहां पर जाने के लिए पूरा समय निकालते हैं, परंतु भगवान के मंदिर में जाने के लिए उनके पास समय नहीं। भगवान को देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए यदि उनके पास समय नहीं है, अपने कुत्तों के लिए समय है, अपने बच्चों के लिए समय है, अपने मित्रों के लिए समय है, अपने संबंधियों के लिए समय है, तो भला भगवान उनको कैसे प्राप्त होंगे। तो गजेंद्र बोल रहे हैं कि उनके लिए तो दुष्प्राप्तया, परंतु मुक्तात्मा भी स्वहृदय परिभाविता, जो मुक्त आत्मा भी है, जो इन सब झमेलों से मुक्त है, मुक्त आत्मा है, ऐसे जीवों के हृदय में स्वहृदय भगवान स्वयं हृदय के अंदर परिभाविताया, बड़े ही प्रेम और भाव से जो भगवान को स्मरण करते हैं, जो भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल मुक्त होते हैं, उनके हृदय में भगवान स्वयं आकर प्रकट हो जाते हैं। तो यदि भगवान के दर्शन करने हैं अपने हृदय में, तो क्योंकि भगवान इन समस्त गुणों से, भौतिक वस्तुओं से अधिक आध्यात्मिक हैं, परे हैं, आध्यात्मिक हैं, तो फिर इसलिए हमें भी मुक्त आत्मा भी बनना होगा, इन भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से स्वयं को दूर करना होगा। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर आप भौतिक वस्तुओं से प्रेम मत करो और अपने हृदय के नेत्रों पर प्रेम का अंजन लगाओ। प्रेमंजना छुरिता भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि जो संत होते हैं, प्रेमंजना छुरिता भक्ति विलोचन, अपने हृदय के नेत्रों पर प्रेम का अंजन लगाते हैं और फिर वो प्रेम भरे नेत्रों से सदैव भगवान का दर्शन करते हैं, हृदय के अंदर भगवान स्फुरित हो जाते हैं। जैसे हमने कल पहले पढ़ा था श्लोक नंबर 16 में, निष्कर्म्य भावेन विवर्जिताकं स्वयं प्रकाशाय नमस्करम, कि जब भी भक्ति करता है, जब भगवान की भक्ति करता है, तो भजन के प्रभाव से प्रेम उत्पन्न होता है और जो भौतिक वस्तुओं के साथ हमारा संबंध है, जो आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती है और फिर वो निष्कर्मी हो जाता है और फिर क्या होता है, स्वयं प्रकाश आया विवर्जिता, मतलब भौतिक वस्तुओं से वो बिल्कुल अलग हो जाता है, भौतिक आसक्ति से उसकी खत्म हो जाती है, फिर भगवान स्वयं प्रकाश आया, स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में। और यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर एक बात बता रहे हैं गजेंद्र जी कि जो मुक्तात्मा भी होते हैं, उनके हृदय में जो भगवान उनके मन में सुफूरित होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्ञानात्मने भगवत, वो केवल उनकी कल्पना नहीं होते हैं, है ना। जो हृदय में भगवान के रूप का चिंतन करते हैं, तो भगवान का रूप कैसा है उसके विषय में बता रहे हैं, ज्ञानात्मने, यानी ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, भगवान के विग्रह में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में जड़ पदार्थ कुछ भी नहीं है, भगवान तो सच्चित आनंद है, चिन्मय है। भगवान को मन में देखना केवल कल्पना नहीं है, जैसे अगर हम मन में, जो यहाँ पर कहा गया मुक्तात्मा भी स्वहृदय परिभाविता, कि वो हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे, तो ऐसे नहीं है। वैसे तो मन जो है वो भौतिक है, है ना, जैसे भगवान ने बताया है भगवत गीता में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव, कि ये सब जिस तरह से जड़ वस्तुओं का ना बताया, जड़ वस्तुओं के बारे में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसी के साथ मन को भी रखा, मन बुद्धि अहंकार, ये सब भी जड़ हैं, परंतु वही मन भगवान ने उन सबको भिन्ना प्रकृति, भिन्ना का क्या मतलब होता है, मैं तो आध्यात्मिक हूँ परंतु मेरी जो शक्ति है वो भौतिक है, मतलब मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी है, भगवान कहेंगे अपरेयन इतस्तन्यत प्रकृति विद्धि में परा, मेरी ये भौतिक प्रकृति भिन्न प्रकृति है, यानी इसका जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद नहीं है जिस प्रकार मेरा है, वो भिन्न है मुझसे, लेकिन एक मेरी दूसरी परा प्रकृति भी है। तो भगवान ने वैसे तो मन को भगवान ने अपरा प्रकृति में रखा है, लेकिन वही मन जब वो भगवान का चिंतन करता है तो भगवान साक्षात चिन्मय भगवान उसके अंदर, ज्ञान आत्मने वही भगवान उसके अंदर प्रकट होते हैं जो सच्चित आनंद है। साक्षात भगवान का स्वरूप, भगवान स्वयं एव प्रकट, क्योंकि भगवान को हमने अपनी साधना से नहीं, भगवान ने अपनी कृपा से स्वयं को प्रकाशित किया हुआ है। जीव इतनी साधना कर ही नहीं सकता कि भगवान को प्रकट कर सके, लेकिन जीव की साधना को देखकर, जीव की गंभीरता को, जीव एक व्यक्ति जब प्रेम के साथ भावना के साथ भगवान का स्मरण करता है तो उसके समर्पण भाव को देखकर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और वो जब हृदय में आते हैं तो क्या होते हैं, ज्ञान आत्मने वो सच्चिदानंद। जैसे जब द्रु महाराज भगवान की पवित्र नाम का जप कर रहे थे, उनके लिए तपस्या कर रहे थे, तो भगवान स्वयं द्रु महाराज के हृदय में प्रकट हो गए थे। तो द्रु महाराज नेत्र बंद करके उसी भगवान पर ध्यान लगाए हुए थे। अब भगवान का ध्यान लगा रहे हैं और भगवान को हृदय में दर्शन कर रहे हैं, परंतु जब वो दर्शन कर रहे थे उसी समय, क्योंकि उन्होंने सांस लेना बंद कर लिया, सारे देवताओं ने भगवान को बोला कि जाइए आप, ध्रुव महाराज ने यदि श्वास लेना शुरू ना किया तो समस्त जो विश्व है वो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान गए थे ध्रुव के दर्शन करने के लिए, भगवान कहते हैं मैं उसको दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जब भगवान गए, तो जब भगवान आए तो भगवान बाहर खड़े होकर ध्रुव के दर्शन कर रहे थे, लेकिन ध्रुव महाराज नेत्र बंद किए हुए थे क्योंकि उनको तो भगवान के हृदय में ही दर्शन हो रहे थे। तब भगवान ने सोचा क्योंकि मैं हृदय में बैठा हुआ हूँ और उसको दर्शन हो रहे मेरे, तो फिर वो नेत्र नहीं खोलेगा, अगर उसके नेत्र खुलवाने हैं तो वो हृदय के अंदर जो मैं खुद प्रकट हुआ हूँ उसको मुझे वापस से खींचना पड़ेगा। फिर भगवान अपने उस स्वरूप को खींच लेते हैं, तब जब वो स्वरूप नहीं दिखता है तब ध्रुव छटपटाने लगते हैं, कहाँ गए वो, तब आंखें खोल के देखते हैं तो सामने भगवान प्रकट होते, मतलब वो साक्षात भगवान को ही देखते हैं। मुक्तात्मा वी स्वहृदय परिभावित, जो भावना के साथ भगवान का मन से स्मरण करते हैं प्रेम के साथ, तो भगवान स्वयं सुफूर्त होते हैं उसके हृदय में। जैसे हमने नारद मुनि के विषय में भी पढ़ा था, नारद मुनि ने पहले जब भगवान का ध्यान किया था तो भगवान उसके हृदय में आए थे, लेकिन आ गए थे और थोड़ा सा दर्शन देकर फिर वो भगवान गायब हो गए थे। अगर वो केवल मन की कल्पना होती तो वो वापस से वो कल्पना को वापस रखते ना, कि अभी वापस से थोड़ी देर के लिए चले गए हैं तो वापस से मैं अपनी कल्पना से उसको हृदय में बिठाता हूँ, नहीं। वो नारद मुनि कितने व्याकुल हो गए थे, भगवान के दर्शन उनको नहीं मिल रहे थे, भगवान को बहुत याद कर रहे थे, भगवान आप एक बार मेरे हृदय में प्रकट हुए अब वापस से कैसे चले गए, मुझे पुनः दर्शन दीजिए। तो ये जो भगवान हृदय के अंदर प्रकट होते हैं मुक्त आत्माओं के, वो कोई कल्पना नहीं होती है, मन की मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होते हैं, बल्कि साक्षात भगवान ही होते हैं। वो ज्ञानात्मने वो चिन्मयी भगवान साक्षात सफूर्त होते हैं। और यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि जो मुक्त आत्माएं हैं, जब भौतिक समस्त वस्तुओं से, अपने अपने शरीर से, अपने पुत्र से, अपने धन से, अपने मित्रों से जब उसकी आसक्ति खत्म हो गई, तो फिर उनकी भगवान के अंदर आसक्ति कैसे लगती, तब वो कहते हैं ज्ञानात्मने भगवते। वो इसलिए क्योंकि षड ऐश्वर्य युक्त भगवान है। भौतिक वस्तुओं में तो थोड़ा थोड़ा आनंद है, परंतु भगवान समस्त आनंद के आकार हैं। भगवती का मतलब है ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्च श्रेयः, ज्ञान वैराग्यस्य एव षडणां भग इति गण, के जिसके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य हो, जिसके अंदर संपूर्ण सुंदरता हो, जिसके अंदर संपूर्ण बल हो, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान हो, जिसके अंदर संपूर्ण यश हो, जिसके पास संपूर्ण धन हो, जिसके पास संपूर्ण वैराग्य हो, जो समस्त विश्व से सुंदर है, भला उस भगवान से कोई मन कैसे हटा सकता है। भौतिक वस्तुओं के पास कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है। अगर है थोड़े समय के लिए धन रहता है, किसी के पास सुंदरता रहती है, बल रहता है, परंतु वो तो क्षीण हो जाने वाला है। तो जो वास्तव में मुक्त आत्मा भी होते हैं, उनके लिए वो सब आकर्षण नहीं करते हैं। लेकिन भगवान का धन, भगवान का बल, भगवान की सुंदरता, यहाँ पर वास्तव में भगवान की ब्यूटी, इसको भगवती कहा गया है कि भगवान इतने सुंदर है कि चाहे वो कोई भी भौतिक वस्तुओं से अपना आकर्षण समाप्त कर भी ले, लेकिन वो विवश हो जाता है भगवान की ओर देखकर, उनकी ओर आकर्षित होने। और एक बार यदि भगवान के सौंदर्य का उसने आनंद लूटा, भगवान के प्रेम का यदि एक बार एक छोटी सी बूंद भी प्राप्त हो जाए, तो फिर वो चाहकर भी कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। उनका हृदय सदैव उसी मधु को पान करने के लिए लालायित रहता है। तो ऐसे भगवान को नमः ईश्वराय, कि मैं ऐसे भगवान को जो परम नियंता है, सब किसी को कंट्रोल करने वाले हैं, मैं नमस्कार करता हूँ, उन्हीं की शरण में आया हूँ, उन्हीं से संरक्षण प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। अनुवाद देखिए, हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलम से पूर्णतः मुक्त हैं, वे अपने अंतस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप्य हैं। यहाँ पर गजेंद्र को ही कहा गया, मतलब प्रभुपाद जी अनुवाद में कह रहे हैं कि हम सब के लिए भगवान दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि हमारा आकर्षण जो है वो इन सब वस्तुओं में है, है ना। हम सब अपने शरीर, अपने पुत्र, अपनी पुत्रियों, अपनी पत्नी, धन, अपने समस्त मित्रों की ओर कितना ज्यादा आकर्षित है, तो हमारे लिए बहुत कठिन है भगवान को प्राप्त करना। इसलिए गजेंद्र की स्तुति में श्री प्रभुपाद जी के, आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप्य हैं, जो मनोरथ, घर, संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं, आप सारे ज्ञान के आगार हैं, परम नियंता है, अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, किंतु वे प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद द्वारा होती है। अपाप विद्धम, अर्थात वे कुलुषित नहीं होते हैं, इसी तथ्य को यहाँ पर बताया गया है। गुण संग विवर्जिताय, यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में कहा गया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अल्पज्ञ एवं मूर्ख लोग भगवान का उपहास करते हैं, क्योंकि वे एक मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। अतएव मुक्त आत्मा ही भगवान को समझ सकते हैं। मुक्त आत्मा भी सुहृदये परिभाविताय, केवल मुक्त आत्मा ही कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा योगी होता है। श्रीमद् भगवद गीता 6.47 में भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम समय युक्त तमोमथ। समस्त योगियों में से जो योगी दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होकर मुझ में स्थित रहता है, मेरी पूजा करता है और वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक युक्त रहता है, और वही सर्वश्रेष्ठ है। वास्तविकता तो यही है कि सबसे बड़ा योगी वही है जो अपने हृदय में सदैव भगवान को के दर्शन करता है, भगवान के साक्षात दर्शन मुक्तात्मभी सुहृदय परिमा, तो वो व्यक्ति जो भौतिक कलमश से भौतिक कलमश से मुक्त है वो भगवान को अपने हृदय में खेद कर देता है। तो यहाँ पर ये लगता है ऐसे, तो क्या भगवान उसके हृदय में खेद हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं? लेकिन वो भगवान ज्ञान आत्मने हैं, वो भले ही वो कहीं भी रह रहे हों, भले वो बंधे हुए हों, भले ही हृदय में खेद हो, लेकिन फिर भी वो भगवान है, वो हर समय भगवान है। और भक्त के वो क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ पर हम गौर से देखें तो भगवान भक्त के हृदय में खेद नहीं है, बल्कि भगवान ने स्वयं उस भक्त के हृदय को कंट्रोल कर दिया है। अब वो भक्त चाहकर भी किसी और को अपने हृदय में नहीं बिठा सकता, है ना? देखा जाए तो अब और भी तीव्रता से जो भी भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भाव से भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान उनके हृदय के अंदर इतना भी स्थान नहीं छोड़ते कि कोई और उसके हृदय में आकर बैठ सके। उसके अपने देह के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों, अपने पत्नी पति और भौतिक किसी भी संबंधी के लिए कोई आसक्ति के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। तो देखा जाए तो भगवान हर समय भगवान है, वही कंट्रोलर है। और इसीलिए यहाँ पर गजेंद्र कह रहे हैं, ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय, के आप ही परम नियंता हैं, अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भादरायणे रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। श्री गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात्परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितीषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासी गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभो न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तु पुनको हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानो क्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधव चरन्त्यलोकव्रतमावरणं वने భూతాత్మ భూత సుహృద సమే గతి నా విద్యతి యస్య చ జన్మ కర్మ వా నామ రూపే గుణ దోష ఏవ వా తథాపి లోకా యయ సంభవాయ స్వమాయయాతాన్ యను కాలమిచ్చత్ తస్మై నమః పరీషాయ బ్రహ్మణేనంత శక్తయే అరూపాయోరురూపాయ నమః ఆశ్చర్య కర్మణే నమః ఆత్మ ప్రదీపాయ సాక్షిణే పరమాత్మనే నమో గిరాం విదూరాయ మనసశ్చేతసామపి సత్వేన ప్రతిలభ్యాయ నిష్కర్మేణ విపశ్యత నమః కైవల్యనాథాయ నిర్వాణ సుఖ సంవిదే నమః శాంతాయ ఘోరాయ మూఢాయ గుణధర్మిణే నిర్విశేషాయ సామ్యాయ నమో జ్ఞానఘనాయ చ క్షేత్రజ్ఞాయ నమస్తుభ్యం సర్వాధ్యక్షాయ సాక్షిణే పురుషాయాత్మమూలాయ మూల ప్రకృతయే నమః సర్వేంద్రియ గుణద్రష్ట్రే సర్వ ప్రత్యయ హేతవే అసతాచ్ఛాయ యోక్తాయ సదాభాసాయ తే నమః నమో నమస్తే ఖిల కారణాయ నిష్కారణాయాత్ భూతకారణాయ సర్వాగమామ్నాయ మహార్ణవాయ నమోపవరికాయ పరాయణాయ గుణారళిచ్చన్ నచిదుష్మపాయ తక్షోభ విస్ఫూర్జితమానసాయ నైష్కర్మ్యభావేన వివర్జితాగమ స్వయం ప్రకాశాయ నమస్కరోమి మాధిక్ ప్రపన్న పశుపాశ విమోక్షణాయ ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమో లయాయ స్వాంశేన సర్వతనుభ్యః మనసి ప్రతీత మాధిక్ ప్రపన్న పశుపాశ విమోక్షణాయ ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ స్వాంశేన సర్వతనుభ్యం మనసి ప్రతీత ప్రత్యగ్రిషే భగవతి బృహతి నమస్తే ఆత్మాత్మజాప్త గృహ విత్త జనేషు సత్తై దుష్ప్రాపణాయ గుణసంగ వివర్జితాయ ముక్తాత్మభిః సుహృదయే పరిభావితాయ జ్ఞానాత్మనే భగవతి నమ ఈశ్వరాయ
హరి కృష్ణ ఆప్ సబ్కా బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్ కృపయా సాథ్ రహియేగా ఔర్ మేరే లియే ప్రార్థనా అవశ్య కీజియేగా కి మే అప్ని సేవా ఔర్ సాధనా కో అచ్చే సే కర్ సకూ హరి కృష్ణ